रिक्तर्पाणिर्न पश्येत राजानं दैवं प्राज्ञम्। खाली हाथ राजा को देखना नहीं चाहिए, माने राजा के पास जाओ तो क्या करो, कुछ भेंट लेके जाओ, महात्मा के पास जाओ कुछ लेके जाओ, मंदिर में जाओ क्या लेके आओ कि लेके जाओ, लेके जाना चाहिए। रिक्तर पाणि, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये भी आगे आएगा उपनिषद में, समित भार, हाथ में समिता लेके, सगुरु मेवा भी गच्छे समित पाणि ही। अगर गुरु यज्ञ आगादि करता है तो उसके यज्ञ में जो पलाश के लकड़ी जो उपयोग होती है वो लेके जाता है दो चार। इसका अर्थ है कि मैं हर रोज आपके लिए समिधा चयन करूंगा। समिधा माने जो होम में लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो मैं हर रोज आपके लिए ले आऊंगा। मैं सर्विस सेवा करने को तत्पर हूं, मानी सेवा की तत्परता दिखाने के लिए हाथ में लकड़ी लेके गए। आप लोग सबने श्री कृष्ण का चरित्र देखा है, सुदामा चरित्र, सुदामा जी और श्री कृष्ण कहां गए थे, जंगल में गए थे समिधा चयन करने के लिए, और वहां बहुत भारी वर्षा हो गई, पूरी रात वृक्ष पर बैठे रहे। तब गुरुजी सुबह ढूंढते ढूंढते गए और अरे अरे कृष्ण अरे सुदामा आवाज लगाए, दोनों कूद के दौड़ के दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी इतनी सेवा से प्रसन्न हो गए, ठिठुर गए, खाया नहीं पिया नहीं, भूखे प्यासे पूरी रात मेरी सेवा के लिए गए थे। अब आशीर्वाद दिया किसने, सांदीप ऋषि ने, कि मेरी दी हुई विद्या आपको उपस्थित रहेगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का, कि जो भी मैंने विद्या दी है जब आपको उपयोग करना हो वो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, उपस्थित रहेगी। ऐसा श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। देखो क्या बात है, मान श्री कृष्ण के चरित्र में भी देखा जाता है गुरु की सेवा करते थे। रामचंद्र विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए गए थे। आप देखिए ये सेवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो शौन कंगीरथ, एक बात यहां शंकराचार्य महाराज कहते हैं, पहले के आचार्य गए हो के न गए हो विधिवत, अभी के और इसके बाद के आचार्य को ऐसे ही आचार्य के पास शिष्य को जाना चाहिए, देहली दीप न्याय से। एनोलॉजी, पहले के लोग संध्या काल जब बिजली नहीं थी तो अपने ये जो डोर स्टेप में, जिसको कहते गुजराती में उमरो, देहली में क्या लगा, दीप लगा देते हैं, वो अंदर को और बाहर को दोनों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ठीक है, और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सब लोग ने किया है आगे, हम भी आगे इस प्रकार से करें। अब सबसे बढ़िया बात आती है, तद्धिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ तो प्रश्न रखना चाहिए, शिष्य जाके प्रश्न करता है, ये नहीं कि प्रश्न की बौछार कर दिया। मैंने कई लोगों को देखा प्रश्न पूछते हैं पर उत्तर देने लगे तो सुनते भी नहीं, ये क्या बात है। प्रश्न, संशय और आकांक्षा, ये तीनों में फर्क है। प्रश्न में हम कुछ जानना चाहते हैं, हम पूछते हैं अगर कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो हम जानना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस क्या है जानना चाहते हैं, तो जहां अज्ञान को दूर करना है वहां प्रश्न है। दूसरा होता है आकांक्षा, अ लीडिंग डाउट, लीडिंग क्वेश्चन, मन में आकांक्षा होती है, कोई कहता है जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब क्या है, आकांक्षा। तीसरा होता है संशय, ये है कि ये है ये जानने के लिए संशय, पक्का नहीं हो रहा है क्या है, कर्म से मुक्ति होगी कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी, ये क्या हो गया संशय। आत्मा एक है कि अनेक है, संशय। तो यहां इन्होंने प्रश्न रखा है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातं भवति। महाराज अंगी जी बताइए, क्या कोई एक चीज ऐसी है जिसको जान लेने पर, पहचान लेने पर सब कुछ जाना सा हो जाता है? ये प्रश्न रखते हैं हमारे शौनक जी। हे भगवः भगवन् सर्वं यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेषेणं ज्ञातं अवगतं भवति एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद् भवति। अब कहते हैं ये प्रश्न आया कहां से, प्रश्न का कारण क्या है देखते हैं। शिष्ट प्रवादम, शिष्ट प्रवादम माने बड़े बड़े विद्वान बैठ के प्रश्न करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई अगर इसको जान लो तो सब कुछ ज्ञाता हो जाएगा, एक ही चीज है जिसको जानने पे और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिनको प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की चर्चा किन्होंने सुनी है, शौनक ने और विद्वानों से सुनी है, सत्संग में सुना है, इसलिए ये प्रश्न उनके मन में आया है। शिष्ट प्रवाद प्रवादम श्रुतवां शौनक तत् विशेषम विज्ञातु काम सन कस्मिन्नु इति वितर्कयन प्रपच्छ। उन्होंने सुन रखा है पर उनको मालूम नहीं है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या कोई एक वस्तु ऐसी है जिसका ज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। अथवा लोक सामान्य दृष्ट्वा ज्ञात्वैव पप्रच्छ, अथवा लोक दृष्टि से हम लोग सब देखते हैं जीवन में, अगर कारण को जान लेते हैं तो सभी कार्य कारण से अभिन्न है, इस रूप से हम जान लेते हैं। कैसे, यथा सुवर्ण के ज्ञान से, सुवर्ण से बनी हुई सब कुछ चीज सुवर्ण है ऐसे मालूम पड़ जाता है। त्रिभुवनदास भीमजी में जाइए, वहां सब कुछ क्या है, सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण, नाम सब अलग अलग है पर आप जानते हैं, अगर सुवर्ण को जानते हैं तो वहां रखी हुई सभी प्रकार के आभूषणों को सुवर्ण के रूप में जान जाते हैं। एक बार पानी को जान लिया, पानी से बनी हुई सभी चीज क्या है, पानी है, भाप क्यों ना हो, बर्फ क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो, एनी फॉर्म इट इज व्हाट, वाटर, नदी क्यों ना हो, समुद्र क्यों ना हो, वर्षा क्यों ना हो, ऐसा देखा गया है कि उपादान कारण के ज्ञान से उपादेय जो भी उससे बना है उसका ज्ञान हो जाता है। अब आप जरा और गंभीरता में देखिए प्रश्न की गंभीरता में, हमारा सबका जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण नहीं माना जाता है, जितना अनुभव है वो विचार करने पे सच्चा भी नहीं होता है, experience does not amount to knowledge. Understand. हमारा सबका अनुभव है सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है कि नहीं? क्या सूर्य उदित होता है? क्या सूर्य अस्त होता है? पृथ्वी घूम रही है और हमारी भ्रांति होती है कि सूर्योदय होता है। इसको कहते हैं कि हमारा अनुभव कुछ हो रहा है और हमारा ज्ञान क्या है उससे विपरीत भी हो सकता है। मिराज वाटर पानी दिख रहा है, वहां मृग जल दिख रहा है, जल दिख रहा है, और हम जानते हैं सच्चा नहीं है। इसलिए अनुभव का अर्थ वो सब सच्चा हो ये ठीक नहीं है। पहले अनुभव की बात करते हैं आपके और हमारे। हम सबने जीवन में देखा है कि कोई भी कार्य हो, बनी हुई चीज हो, जैसे एक टेबल हमारे सामने है, उसको बनाने के लिए दो चीज चाहिए, ऐसे दो से ज्यादा चाहिए पर दो मुख्य माने, एक तो लकड़ी चाहिए और बनाने वाला सुथार चाहिए, कारपेंटर, ब्रेड एंड बेकर, सुवर्णकार और सुवर्ण, जहां भी देखते निमित्त कारण है, समझदार व्यक्ति मनुष्य और बनाने वाली चीज उससे भिन्न है। ये पुष्प अलग है और बनाने वाला माली अलग है। ये पुस्तक अलग है जिससे बनी है और प्रिंटर अलग है। तो दो चीज होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण, सब कार्य के प्रति ये दो कारण है। अब दूसरा हमने देखा है कि दोनों अलग अलग होते हैं। सुतार या ये बनाने वाला अलग है और लकड़ी अलग है, ये बहुत अच्छा भी है। हाँ, अगर सुवर्णकार और सुवर्ण दोनों एक होते तो घर में एक माला लाओ सुवर्ण की तो क्या आ जाएगा? सोनी आएगा, उसकी पत्नी आएगी, उसकी सासू सबसे पहले आएगी, पूरा कुटुंब घर में आ जाएगा। अच्छा है, अलग अलग है, यू कांट बाय एनीथिंग आफ्टरवर्ड। तो दुनिया में उपादान कारण निमित्त कारण क्या है? भिन्न भिन्न। अभी देखो मैंने कहा ना, ये अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता है। लोग यहां से गड़बड़ करते हैं। दुनिया के जितने विचारक हैं, जितने दर्शन है, वेदांत दर्शन नहीं है, याद रखना, वेदांत प्रमाण है। उन्होंने सबने ये कहा कि जैसे दुनिया जगत में उपादान और निमित्त कारण अलग अलग है, ऐसे जगत का भी कारण जो है निमित्त कारण और उपादान कारण क्या होना चाहिए? दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहां से प्रत्यक्ष को देखकर परोक्ष ब्रह्म के लिए ऐसा अनुमान करना ये बिल्कुल बड़ी उनकी क्या थी? गलती थी, मिस्टेक थी। और वो लोग कहते हैं, फिर आर्गुमेंट करते हैं, अगर दोनों एक है तो जगत जड़ है, और जगत कारण अगर मसाला भी उसका बना हुआ है तो वो भी जड़ हो जाएगा। उनको डर है कि भगवान जड़ हो जाएंगे, इसलिए आप देखिए वो लोग कहते हैं गॉड इन हैवन क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ईश्वर ने स्वर्ग में बैठ के ये जगत बनाया। जैसे ऋषिकेश में रोटी बनाते ना, ऐसे ऐसे करके रोटी बना के डालते गए, पृथ्वी आज चंद्रमा ऐसे बना के, ऐसी कल्पना, बच्चे जैसी कल्पना करते हैं। अगर सृष्टि से भिन्न सृष्टा होगा तो सृष्टि के बाहर होगा क्या सृष्टि के अंदर होगा? सृष्टि के बाहर क्या होगा? आकाश के बाहर कुछ होता है? हाँ स्वामी जी, यहां है, तुम्हारे अंदर हो सकता है आकाश, पर बाहर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से लॉजिकल फैलेसिस, तर्क असंगत हो जाएगा। और ये बात कोई भी प्रत्यक्ष मूलक नहीं है, ये बात सिर्फ औपनिषद है, ये वेदांत से प्राप्त है, वेद से प्राप्त है कि जगत कारणम ब्रह्म उपादान कारण भी वही ब्रह्म है और निमित्त कारण भी वही ब्रह्म है। जन्माद्यस्ययतः अस्य जगतः जन्मस्थिति भंग यस्मात् ब्रह्मणः, जिस ब्रह्म से ये जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये प्रत्यक्ष मूलक अनुमान से सिद्ध नहीं है, श्रुति से प्राप्त है कि जगत कारण ब्रह्म एक है। इसके विषय में कौन प्रश्न कर रहा है? शौनक्षी, वो एक है। अब दूसरी बात देखिए, जहां जहां सुवर्ण से बनी हुई माला होगी वहां वहां कौन होगा? सुवर्ण होगा। क्या सुवर्ण की माला सुवर्ण से दूर जा सकती है? नहीं। आपको अगर सुवर्ण देखना है तो किसको देखना पड़ेगा? माला को देखेंगे, सुवर्ण का दर्शन हो जाएगा। और वहां दो है कि एक है?
एक ही है, सुवर्ण
सुवर्ण ही है। आप देख रहे हैं माला को, पर सचमुच में माला को देख रहे हैं कि सुवर्ण को देख रहे हैं?
सुवर्ण।
ऐसा लगता है कि माला को देख रहे हैं, पर देख किसको रहे? सुवर्ण को ही है। इसलिए ये पूरा जगत ही ब्रह्म है, और जिस जगत का अनुभव शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में हो रहा है वही क्या है? ब्रह्म है। यद्यत् चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तत् ब्रह्म, यद्यत् श्रोत्राभ्याम शृणोति तत्तत् ब्रह्म। तो महाराज, माला सुवर्ण है? सुवर्ण माला नहीं है। समझ में आता है? अगर सुवर्ण माला है तो सोने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां सुवर्ण है वहां माला है, कि जहां जहां सुवर्ण की माला है वहां सुवर्ण है?
सुवर्ण की माला है वहां।
हाँ, वाह, है ना। सुबह तो थोड़ा खोपड़ी चलाना पड़ता है। वेरेवर देर इज द गोल्डन चेन गोल्ड इज, वेरेवर गोल्ड इज गोल्डन चेन नीड नॉट बी, है कि नहीं? इसलिए माला सुवर्ण है, सुवर्ण माला नहीं है। जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत नहीं है। समझ में आया? वाह, इतना बड़ा बात पूछते हैं। अभी देखो, एक टन कम नहीं पाते, एक टन सुवर्ण से एक एक ग्राम की एक लाख माला, दो लाख माला बनाई है ना। फिर वो ज्वेलर ने बताया, आइए स्वामी जी, प्रेमपुरी के लिए आप कुछ ले जाओ, यहां से आप यहां से एक चीज ले जाओ, आपको जो भी पसंद आए इसमें से एक ले जाओ। मैंने कहा हमको ज्यादा प्रेमपुरी के लोगों को ज्यादा लोभ नहीं है, मैं सिर्फ सोना ले जाऊंगा, माला तुम रखो अपने पास। एक टन के सोने, एक टन सोना कितना होता मालूम है? इतनी माला बनी है, उसमें से मैं सिर्फ सोना ले जाऊंगा, तुम अपनी मालाएं अपने पास रखो। तो उसके पास क्या रहेगा? वो क्या हो जाएगा? वो भी सन्यासी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर मैं सोना ले लो तो उसके पास ठन ठन पाल हो जाएगा। इसलिए अगर सुवर्ण को पहचान लिया तो सब माला को पहचान लिया। सुवर्ण की प्राप्ति सब माला की भी प्राप्ति है। समझ में आया? अभी देखो, अगर जगत कारणम ब्रह्म है, उपादान निमित्त कारण अभिन्न है, अगर मैं वो ब्रह्म हूं तो संपूर्ण जगत किससे अभिन्न है? मुझ आत्मा से अभिन्न है। सब कुछ मैं हूं, फिर आपको क्या चाहिए? इसको कहते हैं सिर्फ वेदांत में सर्वात्म भाव की बात है और कहीं भी नहीं है। ये सब मेरा ही आत्मा है। सर्वम आत्मैव अभूत, जिसके लिए सब आत्मा ही होगा, मेरा आत्मा ही है, उसके लिए को मोह कश्यो कहा, शोक मोह नहीं रहेगा, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। करनी नहीं है, प्राप्त है ये जानना है, इसको कहते आनंद है। और कोई इससे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, यही जानने से समग्र विश्व प्रपंच मुझ आत्मा से अभिन्न है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। तो लघु प्रश्न मानी छोटा सा प्रश्न किसका लगता है? शौनक जी का। पर अंदर क्या है? बहुत बड़ा गंभीरता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। अब तो बहुत खुश हो गए। कौन? अंगीकुर हो गए। अच्छा प्रश्न है। और श्रोता भी क्या है? प्रबुद्ध है, समझदार है। उन्होंने शुरू किया द्वे विद्ये वेदितव्य। दो विद्या है जो सबको जाननी चाहिए। सब मनुष्य को दो विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौन सा है? पराच अपराच। पराविद्या। पराविद्या क्या है? जो परमात्मक विषय विद्या, जिसमें परमात्मा का ज्ञान हो। हमको प्रातस्मरणीय स्वामी अखंडा जी महाराज ने एक बार बताया, तब हमको ख्याल आया कि सभी उपनिषद देख लेना बेटा, कहीं भी परमात्मा शब्द नहीं मिलेगा। आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, सब जगह क्या शब्द है? आत्मा आत्मा। परमात्मा शब्द कहीं भी नहीं है। और जहां जहां परमात्मा शब्द है, परस्मात् अभिन्न आत्मा इति परमात्मा का है। वो परब्रह्म से अभिन्न आत्मा का नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्द भगवान के लिए उपनिषद में कहीं भी प्रयुक्त नहीं है। आश्चर्य है। तो यहां कहते हैं जो परब्रह्म के विषय का जो ज्ञान है, परब्रह्म का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं पराविद्या। दुनिया में दो ही चीज है, एक तो चैतन्य स्वरूप आप, बोध स्वरूप आप, और दूसरा ये बोध स्वरूप आप जिसके विषय में जानते हैं वो आपके द्वारा प्रकाशित जगत, कॉन्शियस मी एंड व्हाट आई एम कॉन्शियस ऑफ, ओनली टू। आत्मा जो सबको जानता है और जिसका ज्ञान होता है वो क्या है? अनात्मा। दो ही है, जानने वाला आत्मा, जिसको जानता है वो क्या है? अनात्मा। ठीक है, तीसरा कोई है? अगर शंख चक्र गदाधारी पद्मा भी आ गए तो भगवान भी क्या हो जाएंगे? है, अगर मैं देखूंगा उनका शरीर भी अनात्मा, मेरा भी अनात्मा, आपका भी अनात्मा, पर आत्मा जो परमेश्वर का है उसको मैं नहीं देख सकता है, वो तो आत्मा ही रहेगा। यद विदितम जो भी हो वो अनात्मा है। दो ही पदार्थ, देखो उपनिषद क्या है, गीता में भी क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति ही, आत्मा अनात्मा, दो ही चीज है। तो ज्ञान भी कितना होगा? दो ही। आत्मा का ज्ञान पराविद्या, अनात्मा का ज्ञान अपराविद्या। क्या बात है, दो ही है, तीसरा संभव नहीं है। स्वामी जी मैं तो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं, कौन सा ज्ञान है? अपरा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन वाणी, ये सॉफ्टली बोलने वाले लोग, सॉफ्टवेयर फैलोस, सॉफ्टवेयर फैलोस, आई एम सॉफ्टवेयर। ओके, आत्मा अनात्मा, मैं जानता हूं एस्ट्रोलॉजी अनात्मा। यहां तो इतना उपनिषद ने बता दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदस ज्योतिषम इति तत्र अपरा, ये सबको अपरा बोल दिया। परा कौन सा है? यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या से ये आत्मा का ज्ञान होता है वही परा विद्या है। चारों वेद, वेदांग और दुनिया में जितनी विद्या है सब क्या है? अपरा विद्या। और भगवान शंकराचार्य एक बात और बताते हैं, अपरा विद्या अविद्या एव। अपरा विद्या को अविद्या कैसे कहते हैं? क्योंकि जितना हम जानते हैं, कोई भी विद्या का अध्ययन करो इतना जानते हैं कि कितना नहीं जानते हैं। आप जैसे पढ़ते जाओगे तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा, अरे अभी इतना पढ़ने का बाकी है, इतना पढ़ने का और बाकी है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इट रिवील्स व्हाट? मोर इग्नोरेंस। और दूसरी बात, अपरा विद्या अपना स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर नहीं करती है, उसको बनाए रखती है, इसलिए वो क्या है? अज्ञान स्वरूपी है। बहुत बढ़िया बताया। अभी कल एक दिन और मेरे पास, कल सुबह परा विद्या क्या है थोड़ा अपरा का निर्णय करके मैं एक मंत्र उपनिषद का सुनाऊंगा आपको। यदा पश्य पश्यते रूक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विदुय निरंजनम परमम साम्यम उपैति नित्यम। बहुत बढ़िया मंत्र है, कल आपको सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।